ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताईनुहु व नस्ताग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورہ لہب ہے. لہب عربی زبان کے اندر کہتے ہیں بھڑکتے ہوئے شعلے کو. لفظ لہب اس سورت کے اندر دو جگہ پر آیا ہے, اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ لہب رکھا گیا ہے. پہلے تو اس کا ترجمہ سن لیجئے. تبت یدا ابی لہب و تب تب یتیبو تبن و تبابن, اس کا معنی ہے ہلاک ہونا, برباد ہونا. ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں, و تب اور وہ خود بھی ہلاک ہو چکا, برباد ہو چکا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کی دولت اور اس کی کمائی نے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا, کچھ کام نہیں آئی. سیصلا نارن ذات لہب, وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. ومراتہ, اور اس کی بیوی بھی اسی بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگی. حمالت الحطب, ایسی حالت میں کہ وہ لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوگی, لکڑیاں اٹھائے ہوئے. فی جیدہا حبل من مسد, اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی یا مضبوط بٹی ہوئی رسی لیے ہوئے اپنی گردن میں. یہ تو اس کا ترجمہ ہوا. یہ دراصل اس سورت کا جو شان نزول ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लोगों को दावत इस्लाम तौहीद और रिसालत की दावत पेश करने का हुक्म मिला। कुरान पाक की जब यह आयत नाजिल हुई, वंजिर अशीरतकल अकरबीन वराहतक मिनहुल मुखलसीन, कहते हैं वराहतक मिनहुल मुखलसीन ये पहले थी, बाद में उसकी तिलावत मंसूख हुई, और ये तो बाकी है उसका मफहूम तो अभी भी, कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को और ख़ास तौर पर अपनी जो जमात है, अपना कुंबा है, उसको अल्लाह के अज़ाब से डराइए। तो जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर, ये जो सफ़ा पहाड़ी है उस पर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त वो बाकायदा, आजकल तो वो जो है दीवारों के दरमियान महसूर है, वो मुस्तकिल अलग पहाड़ी ही की तरह थी। उस पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ जा कर के आपने आवाज़ लगाई, या सबाहा। ये अरबों के अंदर आपस में बड़ी अदावतें, दुश्मनावटें हुआ करती थी, और एक कबीला अचानक रात के अंधेरे में किसी पर हमला कर देता था और उसकी को नुकसान पहुंचाता था, उसकी कत्लो गारत हुआ करती थी। कब किस तरह वो चौड़ाए उसके मुतालिक कोई गारंटी नहीं दी जा सकती थी। तो ऐसे मौके पर जब किसी कबीले वाले को, किसी एक फर्द को ये मालूम होता कि मेरे कबीले के ख़िलाफ़ दुश्मन कबीला चढ़ाई करके आ रहा है, तो वो उस ज़माने में टेलीफोन और आजकल के जो आलात एक दूसरे को आगाह करने और ख़बर देने के लिए हैं, वो तो थे नहीं। तो वो आदमी जिसको मालूम हो जाता था कि मेरे कबीले के ख़िलाफ़ फलाना कबीला जो दुश्मन है वो चढ़ाई करके आ रहा है, तो अपने कबीले को खबर करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए, जवाब देने के लिए, आगाह करने के वास्ते वो बुलंद जगह पर चढ़ जाता था और आवाज़ लगाता था, या सबाहा। उसकी आवाज़ को सुन करके लोग जमा हो जाते थे और फिर उसको जो खबर देनी होती थी तिला वो दिया करता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जब यह आयत करीमा वंजिर अशीरतकल अकरबीन, कि ए नबी आप अपने करीबी ख़ानदान वालों को, रिश्तेदारों को अल्लाह के अदाब से डराइए कि अगर वो ईमान नहीं लाए, अपने कुफर और शिरक से तौबा नहीं की, अल्लाह ताला की तौहीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार नहीं किया, तो अल्लाह का सख्त अज़ाब उनको जो है पहुँचेगा, ये आप उनको बतलाइए। जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों को जमा करने के लिए इसी तरह कोहे सफ़ा पर चढ़ करके आवाज़ लगाई, या सबाहा। और फिर बाकायदा ख़ानदान के जो अफराद थे, उमूमी अंदाज में भी और खुसूसी अंदाज में भी, उमूमी अंदाज में या आला बनी अब्दे मनाफ, या आला बनी हाशिम, या आला बनी अब्दे मुत्तलिब, इस तरह ख़ानदानों का नाम ले लेकर के, और इसी तरह क़ुरैश के दूसरे जो कबीले थे उनके नाम लेकर, और फिर अफराद के भी नाम लिए, या अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, या हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, या सफ़ियत बिनत अब्दुल मुत्तलिब फूफी का नाम लिया, अपनी साहबजादी हजरत फातिमा का नाम लिया, लोगों के नाम ले लेकर, तो कबीलों के भी नाम लिए उमूमी अंदाज में भी, उनको खिताब किया और खुसूसी इनफरादी शख्सी एतबार से भी खिताब किया। लोग जमा हो गए, कहाँ से लिखा है कि उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक अगर कोई ख़ुद हाजिर न हो सकता था किसी वजह से, तो वो अपना नुमाइंदा भेज देता था कि भाई जाओ देखो क्या है, क्या बात कही जा रही है। चुनांचे सब लोग जमा हो गए और सबके जमा होने पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूंकि सफा पहाड़ी के ऊपर खड़े थे और लोग आपके सामने थे, पहाड़ी जिस पर आप खड़े हैं उसके पिछली तरफ क्या है वो लोग जो आपके सामने थे उनको मालूम नहीं था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि बतलाओ अगर मैं तुमको ये कहूँ कि इस पहाड़ी के दामन में पीछे एक लश्कर है जो सुबह या शाम तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे, उसको सच्चा समझोगे? तो लोगों ने जवाब में कहा कि हाँ हमने आज तक आप पर कभी झूठ का तजर्बा नहीं किया, आपको कभी झूठा नहीं पाया, इसलिए अगर आप ऐसी बात कहेंगे तो हम मान लेंगे। तो ये उनसे इकरार कराने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुमको अल्लाह के सख्त अजाब से डराता हूँ अपने कुफरों को। आपके कहने का मतलब ये था अल्लाह के सख्त अजाब से डराता हूँ का कि तुम जिस कुफर और शिर्क के अंदर मुब्तला हो अपने आप को उससे निकालो, तौबा करो और तौहीद और रिसालत का इकरार करो, अगर ये कुफर और शिर्क नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह का सख्त अजाब तुम पर आएगा। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। उस मजमे में आपका चचा अबू लहब भी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब उनके 11 बेटे थे, उनमें से एक हजरत अब्दुल्ला ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार होते हैं और बाकी और भी आपके 10 चचा थे, उनमें एक का नाम था अब्दुल उज्जा। उज्जा ये उस बुत का नाम है जिसकी वो लोग पूजा किया करते थे, उसी की तरफ निस्बत करते हुए उसका नाम अब्दुल उज्जा रखा गया था, जैसे अल्लाह की तरफ निस्बत करते हुए अब्दुल्ला अब्दुल रहमान नाम रखते हैं। और उसका उसकी कुन्नियत थी, लकब था अबू लहब। लहब जैसा कि मैंने कहा भड़कते हुए शोले को कहते हैं। वो बड़ा सुर्ख और सफेद बड़ा हसीन था, उसका चेहरा एकदम सुर्ख था सफेद था, सुर्ख सफेदी के अंदर ऐसी सुर्खी थी ऐसा मालूम होता था जैसे कि शोला भड़क रहा हो। उसी खूबसूरती की वजह से उसको ये जो है लकब और कुन्नियत दी गई थी अबू लहब की, और उसी नाम से वो मशहूर था और वो बड़ा मालदार भी था। कुरैश के और मक्का मुकर्रमा के मालदारों में उसका शुमार होता था। उसकी बीवी जो थी उसका नाम था अरवा और उसकी भी कुन्नियत थी उम्मे जमील। ये अबू सुफियान जो थे उनकी बहन होती है उसकी बीवी, अबू लहब की बीवी उम्मे जमील। ये तो बहरहाल जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत पेश की और ये बात फरमाई तो उस मजमे में अबू लहब भी मौजूद था। उसने क्या किया ये सुनकर के बोल पड़ा तब्बन लका सायर अल्यौम अलहादा जमातना या अलहादा दाउतना, कि तुम्हारे लिए हमेशा हलाकत और बर्बादी हो, क्या इस काम के लिए हमको यहाँ बुलाया था जमा किया था? ये बद्दुआ या जुमला उसने कहा तब्बन लका हलाकत और बर्बादी हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसने ये जुमला कहा, इतना ही नहीं बल्कि पत्थर लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा उसने, और उसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी जख्मी हुई और खून आलूद हुई। तो उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आयत ये सूरत नाजिल हुई जिसमें जाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बद्दुआ देगा तो हर मोमिन की तमन्ना ये है कि उसके जवाब में हम उसको बद्दुआ दें, गोया हर मोमिन की उसी दिली ख्वाहिश को पूरा करते हुए अल्लाह तबारक तआला ने आए सूरत नाजिल फरमाई जिसकी शुरुआत ही है इस बद्दुआ या जुमले से तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हों, दोनों हाथ टूटें। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह बद्दुआ दी थी, उसको ये बद्दुआ। गोया हर मोमिन इस सूरत को पढ़ करके अपने दिल की भड़ास को निकाले, उसके लिए अल्लाह की तरफ से मौका फराहम किया गया। और आगे वतब, आगे गोया बतलाया गया कि खाली बद्दुआ नहीं, बल्कि ये गोया बद्दुआ वजूद में आ गई और वो क्या हो गया, हलाक हो गया। ये वतब्बा जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई उस वक्त तो हलाक नहीं हुआ था, लेकिन आइंदा उसकी होने वाली हलाकत इतनी यकीनी थी, इतनी पक्की थी कि उसको इसी लफ्ज तब के जरिए से अदा किया गया कि हलाक हो गया। चनानचे उसके मुताबिक बाद में वो हलाक हुआ। तो बहरहाल ये आयत, ये पूरी सूरत उसी मौके पर नाजिल हुई थी जो वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफें पहुंचाता था। रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत देने के लिए जाते थे, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। हजरत तारिक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं कि मैंने जो है जुल्मजाज के बाजार में या वहाँ उसी हरम के इलाके के अंदर मौसम हज के अंदर मुख्तलिफ दिनों में मेले लगते थे मुख्तलिफ मकामात पर। एक तो सूक उकास था, बाजार का नाम है उकास, और वहाँ कुछ दिन मेला लगता था। फिर वो मेला उठ करके आगे आता था जो है जुल्मजाज में, ये भी एक जगह का नाम है, कुछ दिन वहाँ रहता था मेला। उसके बाद वो जुल्मजिन्ना के अंदर आता था और वहाँ मेला लगता था, फिर मीना में आता था। आखिर में मीना के ऊपर वो मेला क्या हो जाता था, ख़त्म हो जाता। वो जो मीना बाजार की इस्तिलाह है ना, वो उसी से कायम हुई है। तो बहरहाल ये उस, चूँकि तमाम अरब के कबाइल वो हज के उमा अंदर लोग कबाइल अरब से आया करते थे, तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वालों के सामने दावत इस्लाम पेश करने के लिए उस वक्त मौके से फ़ायदा उठाकर उस मेले में खरीदो फरोख्त होती थी। लोग आने वाले लोग माल लेकर के आते थे, बेचते थे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे, कुछ शेर व शायरी भी होती थी, मजमे होते थे, लोग बैठते, इस तरह के मुकाबले होते शेर शायरी के, वो तो गोया वक्त गुजारी के लिए। असल तो ये जो ये होता था ये हज के मौसम में होता था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आने वालों से, उनके जमा होने से फ़ायदा उठाते हुए उनके सामने दावत इस्लाम पेश करते थे। चुनांचे हज़रत तारिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा वो बाहर से आए थे, वो नहीं जानते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नहीं जानते थे अबू लहब को, कि मैंने देखा एक शख्स हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगो अय्युहन्नास, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। क्या उनके पीछे पीछे एक ऊंचा आदमी था, बड़ा जो है खूबसूरत सफ़ेद अबा पहने हुए, वो कहता था कि ये नऊज़ु बिल्लाह कि ये झूठा है, इसकी बात, ये पागल है, इसकी बात की तरफ ध्यान न दो, और वो पत्थर भी मारता था। इन्होंने मालूम किया तो पता चला कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है अबू लहब, जो आपके साथ ये उसकी आदत थी, जहाँ जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत पेश करने के लिए लोगों के मजमों में जाते थे तो आप इस तरह दावत पेश करते थे, और ये पीछे जा कर के इस तरह कहता था कि इनकी बात को मत सुनो, ये झूठे हैं, नऊज़ु बिल्लाह, ये पागल हैं, और फिर पत्थर भी मारता था। तो ये उसकी हरकत थी। उसकी बीवी जो है उम्मे जमील, ये भी इस बुराई के अंदर उसका साथ दिया करती थी, और उसकी आदत ये थी कि वो बबूल की लकड़ियाँ काट करके लाती थी जिसमें कांटे हुआ करते हैं, और रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ से गुजरने का रास्ता होता था वहाँ उसको वो बिछा दिया करती थी ताकि सुबह को आपको वो कांटे लगे। तो ये उसकी आदत थी। ये दोनों मियाँ बीवी का यही गोया शुगल था और यही करते थे। उसी पर अल्लाह तआला की तरफ से ये सूरत नाजिल हुई। उसको बाद लोगों ने कहा भी कि भाई ये जो कह रहे हैं अगर ये सच्चा हुआ, ये अजाब आया तो तुझे कौन बचा पाएगा। तो चूंकि वो बड़ा मालदार था तो कहा कहता मैं अपने माल के जरिए से अपने आप को इस अजाब से छुड़ा लूंगा। उसी पर अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया माँ अगना माल हूँ वो माँ कसब के कुछ काम नहीं आया उसका माल, उसकी दौलत और जो उसने कमाई की थी। अब यहाँ कमाई को अलग जिक्र किया, दौलत को अलग जिक्र किया, हालांकि दौलत खुद कमाई ही से होती। तो बाद उसकी तशरीह की गई है कि माल तो जो है कभी आदमी को बगैर कमाए हुए विरासत में भी मिलता है, लोग हदिये में भी देते हैं, जबकि कमाई जो अपने जोरे बाजू से उसने हासिल की, उसी माल को जब कारोबार में लगाएगा और उससे जो नफा कमाएगा उसको कमाई से ताबीर करेगा। और बाजों ने कमाई का मिसदाक उसकी औलाद को भी बतलाया है कि उसकी जो औलाद है आदमी की, जैसा कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी कमाई में से है, तो उससे मुराद उसकी औलाद ली गई है। तो वह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी दौलत उसकी औलाद ये किसी काम नहीं आई, अल्लाह के अदाब से उसको बचा नहीं सकी। तो ये सूरत जो है उसी मौके पर नाजिल हुई। और यहाँ जो कहा हम्मालतल हतब, उसकी बीवी जो है वो लकड़ियाँ उठाने वाली। तो अब ये लकड़ियाँ कौन सी, एक तो वही मतलब जो अभी मैंने बतलाया कि वो बबूल की कांटेदार लकड़ियाँ लाती थी और रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाया करती थी, इसलिए उसको हम्मालतल हतब से ताबीर किया है। बाज कहते हैं कि नहीं, यहाँ लकड़ियाँ से मुराद जो है वो जलाने के लिए जो लकड़ियाँ होती है सोख्ता बर्तन जिसको गुजराती में कहते हैं, तो वो तो बावजूद इसके कि वो तो मालदार घराना था, लेकिन यहाँ उसकी गायत बुखल को बतलाना है कि मालदार घराना होने के बावजूद ये जलाने की लकड़ियाँ तो वो आसानी से खरीद सकते थे, लेकिन नहीं, वो इतनी बखील थी और खसीस तबीयत की थी कि वो बजाय जलाने की लकड़ियों को खरीदने के खुद ही उनको लेने के लिए जाती थी, इसलिए उसको हम्मालतल हतब से। और बादों ने कहा हम्मालतल हतब लकड़ियाँ उठाने वाली, जिसका फारसी में तर्जमा करते हैं हैजुम कश, हैजुम कश लकड़ियाँ उठाने वाली। तो हैजुम कश जब फारसी में तर्जमा करते हैं तो वो चुगली खाने वाले को बोलता है, जैसे तेल डालता है, ये तेल डालने का पेट्रोल डालने का काम करता है, यानी आपस में लड़ाने का। तो ये लकड़ियाँ बोल करके गया, चूँकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की चुगलियाँ दूसरे उन तकलीफ पहुँचाने वाले दुश्मनों के सामने करती थी और आपस में लड़ाती भिड़ाती थी, इसलिए उसको हम्मालतल हतब से ताबीर किया। और एक चौथा मतलब ये भी बतलाया गया है कि जहन्नम में जब दाखिल होगी नहीं तो वहाँ भी ये लकड़ियाँ ही उस आग में डालेगी जिस आग में उसका शौहर क्या कर रहा है, जल रहा है, वहाँ भी उसका अल्लाह ताला की तरफ से बतौर अजाब के उसको यही काम करवाया जाएगा। एक चौथा मतलब ये भी बात लोगों ने बतलाया है। बहरहाल फी जिदिहा अबलुम मसद, मसद कहते हैं खजूर की छाल की जो रस्सी बनाई जाती है मजबूती के साथ बट करके, तो वो उसकी गर्दन के अंदर खजूर की छाल की मजबूत बटी हुई रस्सी, कहते हैं कि वो जब लकड़ियाँ लेकर के आती थी तो उसी रस्सी से लकड़ियों को बांधती थी और बांध करके जो है अपनी पेशानी के ऊपर, जैसे मजदूर बोझ उठाने वाले मजदूर जो है ना, वो बोझ का जो आगे का हिस्सा है रस्सी का वो अपनी पेशानी पर ये करके बोझ उठाते, इस तरह वो उठा करके आती थी। और इसी यही उसकी का तरीका था। एक मरतबा थक गई और जो है वो एक पत्थर के ऊपर बैठी, तो वो जो रस्सी थी उसकी वो पेशानी से नीचे आ गई और उसी में वो उसकी गर्दन के अंदर उसको जो है वो उलझ गई और फांसा लग गया और उसी में उसकी मौत वाक़ हुई। ये भी बहरहाल ये अबू लहब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होता है, हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला का अखिया अल्लाह थी भाई, यानी माँ दोनों की अलग अलग थी, बाप एक थे। जब यह सूरत नाजिल हुई तो उस वक्त अबू लहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार साहबजादियाँ थीं, एक तो हजरत ज़ैनब बड़ी साहबजादी, उनका निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी आप पर वही का सिलसिला नाजिल हो और नबूवत से फराज जाएँ उससे पहले उसका निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबुलास इब्ने रबी जो हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा के खाला ज़ाद भाई होते हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे उनकी बहन के बेटे होते हैं, उनके साथ कराई थी। और दूसरी दो साहबजादियाँ जो थी रुकैया और उम्मे कुलसूम, उनका निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी नबूवत से पहले यानी वही नाजिल होने से पहले, अबू लहब के दो बेटों से, एक का नाम उतबा था और दूसरे का नाम उतैबा, उन दोनों से निकाह कराया था। अभी रुखसती की नौबत आई नहीं थी और आप पर वही का नाजिल होने का सिलसिला शुरू हुआ और आपने दावत इस्लाम पेश करना शुरू किया। और फिर ये जो उसने मुखालफत की अबू लहब ने, और उस पर ये सूरत नाजिल हुई। जब ये सूरत नाजिल हुई तो अबू लहब ने अपने बेटों को कहा कि तुम इनकी लड़कियों को तलाक दे दो वरना मेरे साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। चुनांचे उन दोनों लड़कों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों को तलाक दी। वहाँ हुजूर के पास जाकर आपके सामने एक ने तो, बड़े ने तो खाली तलाक देने पर ही इक्तफा किया और कुछ कोई गुस्ताखी वाला मामला नहीं किया। दूसरा जो उतैबा था छोटा, उसने तो नऊज़ु बिल्लाह गुस्ताखी वो बुरा भला भी कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर वो थूका और आपको आपकी साहबजादी जो थी उसके निकाह में उम्मे कुलसूम उसको तलाक दी। जब उसके उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये गुस्ताखी वाला सलूक किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर बद्दुआ या जुमला इरशाद फरमाया था, अल्लाहुम्म सल्लित अलैहि कलमम मिन किलाबी, ऐ अल्लाह तेरे दरिंदों में से एक दरिंदे को तू उसके ऊपर मुसल्लत कर दे। चुनांचे ये बद्दुआ, अबू तालिब भी मौजूद थे, अबू तालिब ने जब सुनी तो अबू तालिब ने इसको कहा कि तुम इनकी बद्दुआ से अब नजात पा सकते नहीं हो। खुद अबू लहब भी जानता था कि अब इनकी बद्दुआ तो अपना रंग ला करके रंग दिखाएगी, अपना असर दिखलाएगी। चुनांचे ये बाप बेटे सब डरे सहमे रहते थे कि पता नहीं कब उसका असर जाहिर हो। तो एक मरतबा एक सफ़र में शाम के इलाके में अबू लहब अपने इसी बेटे को लेकर जा रहा था काफला में, पूरा काफला था, काफले में ये दोनों बाप बेटा भी थे। तो एक जगह पर क़याम हुआ तो अबू लहब ने कहा भाई इनकी इनकी बद्दुआ की वजह से हमको डर है कि कहीं कोई दरिंदा आकर के हमारे बेटे को फाड़ न खाए, इसलिए तुम हमारे हमारा लिहाज करते हुए उसकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त करो। काफले वालों ने क्या किया, काफले का पूरा सामान जो है उसका ढेर लगाया और उसके ऊपर ये उसके अबू लहब के बेटे को लिटाया और सामान का जो ढेर था उसके चारों तरफ काफले वाले लेटे। रात को आया शेर आया और आकर के उसने सबको सूंघा, कोई उसके बाद छलांग लगा के ऊपर गया और उसका सर जो है उसके बदन से अलग कर दिया। और बाद रिवायतों में तो ये है कि ये लोग थे अभी यानी अभी रात को सोने की नौबत नहीं आई थी, उसी वक्त अब बाहर से शेर ने जो है आवाज़ लगाई धड़ू का, तो उसकी गरजने की आवाज़ सुन करके ये कांपने लगा। लोगों ने कहा भाई हमने भी सुनी है जैसी तूने सुनी, तुझ पर इतना ज़्यादा असर क्यों है? तो कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के जुमले याद आ रहे हैं, इस रुए ज़मीन पर आसमान के नीचे उनसे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है। तो इसलिए फिर खाने का वक्त आया तो डर की वजह से और खौफ की वजह से उसका हाथ आगे नहीं जा रहा था, इसी तरह गया हाथ उसका इसी रह गया। और रात को फिर यही वाकया पेश आया, उसी शेर ने आकर के उसको इस तरह ख़त्म कर दिया। तो ये हालांकि इन दोनों को हुजूर की सदाकत का यकीन था उसके बावजूद ईमान नहीं लाए ये। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहबजादियों को हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा, बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुकैया का निकाह हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हा से किया और उनके निकाह में थी उसी ज़माने में इन दोनों मियाँ बीवी यानी हज़रत उस्मान और हज़रत रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हबशे का सफ़र किया, हिजरत का। एक मरतबा गए फिर वहाँ एक अफवाह फैली थी कि मक्के वाले सब मुसलमान हो गए رب مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. اس لیے اس افواہ کو سن کر بہت سے لوگ جو گئے تھے وہاں واپس آئے مکہ. یہاں آئے تو معلوم ہوا کہ سلسلہ جن کا تو باقی ہے. پھر دوبارہ مکہ ہی سے حبشہ کی ہجرت کی اور پھر حبشہ سے مدینہ کی بھی ہجرت کی. گویا تین ہجرتیں کی, حبشہ کی دو اور مدینہ کی ایک. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے اس زمانے میں یہ بیمار تھیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلنا چاہتے تھے لیکن ان کی تیمارداری کے لیے حضور نے ان کو روک لیا کہ تم مت آؤ, ان کی تیمارداری میں رہو. ادھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں کامیابی عطا فرمائی اور ادھر وہ بشارت لے کر جو ہے بشارت لینے والا آدمی, خوشخبری سنانے والا جب مدینہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آپ کی صاحبزادی کو دفن کیا جا رہا ہے حضرت رقیہ کو. حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیا اور کہا کہ پہلی صاحب بیٹی کو بھی اللہ کے حکم ہی سے ان کے نکاح میں دیا تھا اور دوسری بیٹی کو بھی اللہ ہی کے حکم سے. پھر سن ہجری 8 یا 9 میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بغیر نکاح کی ہوتی تو وہ بھی ان کے نکاح میں دیتا. یہ دو صاحبزادیاں حضور کی حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں, اس لیے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے. نور, گویا حضور کی ہر صاحبزادی ایک نور ہے, دو نور والے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاص خصوصیت ہے. تو یہ دو, اور آخری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے نکاح میں دیا تھا. تو بہرحال یہ اولاب کے کہنے سے بیٹوں نے اس کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی تھی. بعد میں پھر جب غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے, سن ہجری 2 میں غزوہ بدر پیش آیا. غزوہ بدر میں بھی اس کو شریک ہونا تھا لیکن مارے ڈر کے وہ شریک نہیں ہوا اور اس نے اپنی جگہ پر ابو جہل کے بھائی کو رقم دے کر کے اپنے جگہ پر بھیج دیا. اور ادھر غزوہ بدر ختم ہوا, اس کے بعد جو ہے چند ہی دنوں کے اندر اس کو چیچک کی بیماری لگ گئی. عربوں کے اندر وہم پرستی کی وجہ سے وہ یوں سمجھتے تھے کہ چیچک کی بیماری کے والے کے پاس جو کوئی جاتا ہے اس کو بھی چیچک کی بیماری لگ جاتی ہے. اس لیے جب اس کو چیچک کی بیماری لگی تو اس کے گھر والوں نے اپنے رہائشی گھر سے ایک دوسرے گھر میں اس کو ڈال دیا اور وہاں کوئی نہیں جاتا تھا. اسی بیماری میں چند دن کے اندر وہ پورے جسم پر وہ بیماری پھیل گئی, اسی میں اس کی موت واقع ہوئی. مرنے کے بعد 3 دن تک ایسی اس کی لاش اسی مکان کے اندر پڑی رہی, بدبو آنے لگی. لوگوں نے اس کے بیٹوں کو آر دلائی, شرم دلائی کہ تمہارا باپ مر گیا تو ابھی تم خبر نہیں لیتے. انہوں نے پھر ایک حبشی غلام کو جو ہے پیسے دے کر کے تیار کیا. تو بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ اس نے جو ہے اس کو ایک دیوار کے سہارے سے اس کی لاش کو بٹھا دیا اور بعد میں پتھر مارے, پتھر ڈالے اس کے اوپر سب نے دور سے. قریب تو کوئی جاتا نہیں تھا بیماری کے ڈر سے, اتنے پتھر ڈالے کہ وہیں اسی حالت میں وہ ان پتھروں میں دب گیا, دفن ہو گیا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک گڑھا کھودا گیا کھڈا اور لکڑی کے ذریعے سے اس کی لاش کو اندر ڈالا گیا اور اس کے اوپر پتھر ڈال کے اس کو اسی طرح دفن کر دیا گیا. گویا اس طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کی موت آئی. اور جب یہ سورت پاک نازل ہوئی تو اس وقت یہ ابو لہب کی, یہ تو مکہ مکرمہ میں حضور تھے اور نازل ہوئی تھی, ابو لہب کی بیٹی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتی تھی, گالیاں دیتی تھی, برا بلا کہتی تھی. اس کو معلوم ہوا کہ اس سورت نازل ہوئی ہے تو باقاعدہ وہ پتھر لے کر آئی, برا گالیاں دیتی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس میں بیٹھے. حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یا یہ آ رہی ہے وہ گالیاں دیتی ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ پتھر لے کر آ رہی ہے, آپ کو مارے گی. حضور نے کہا گھبراؤ مت, وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. چنانچہ جب وہ قریب آئی تو حضرت ابو بکر سے پوچھتی ہے تمہارے ساتھی کہاں ہیں, حالانکہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو उन्होंने मेरे ये बुरी बुरा ये ऐसी बातें कही है। हज़रत अबूबकर ने कहा उन्होंने नहीं कही, तो अल्लाह ताला ने उतारी। उसी मौके पर उसने ये भी कहा, मुजम्ममन कलैना व दीनहु अबैना व हुक्महु क्या है व हुक्महु असैना, कि हमने मुजम्मम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वाले बजाय मोहम्मद के मुजम्मम कहते थे। नऊज़ु बिल्लाह, मोहम्मद का तर्जमा होता है काबिल तारीफ, समझा कि नहीं, और मुजम्मम का तर्जमा होता है काबिल मजम्मत, बुराई किया जाने वाला। तो मोहम्मद बोलते नहीं थे। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मुजम्मम बोल पर नाराज बोलने पर नाराज नहीं होते थे, बल्कि हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है, इनकी गालियों को अल्लाह ताला ने यूं ही मेरे ऊपर से हटा दिया। इसलिए कि वो लोग जब भी हुजूर को बुरा भला कहते थे तो हुजूर के नाम में मोहम्मद नहीं बोलते थे, बल्कि क्या बोलते थे, मुजम्मम, कि वो मुजम्मम को बुरा भला कहते। और मैं तो मुजम्मम हूँ नहीं, मेरा नाम तो मोहम्मद है, मेरा नाम तो मोहम्मद। देखो यानी कितनी एकदम सादगी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हल कर दिया, धराई भी बुरा भी नहीं माना, मामला ख़त्म हो गया। तो बहरहाल ये लोग मुजम्मम को बुरा भला कहते हैं और मेरा नाम तो मोहम्मद है। अल्लाह ताला ने इस तरह इनकी सारी गालियों को मेरे ऊपर से हटा दिया। हुजूर फरमाते हैं तो वो कहते हैं मुजम्ममन कलैना, हमने दुश्मनी कर ली, जो है कला यकनी का माना है, मा मद्दा का रब्बू का वमा कला, हमने मुजम्मम से नऊज़ु बिल्लाह जो है दुश्मनी कर ली, व दीनहु अबैना, और के उनके दीन को कबूल करने से हमने इनकार किया, व हुक्महु असैना, और उनके हुक्म की हमने नाफरमानी की। यह शायर ये पढ़ा करते थे ये जुमला, वो भी वो इसी तरह बोलती हुई वहाँ से चली गई। खैर बहरहाल इस तरह ये सूरत नाजिल होने के बाद इनकी दुश्मनावट के अंदर भी इजाफा हो गया था, लेकिन मौत तो उसकी हुजूर के हिजरत करके तशरीफ ले जाने के बाद वाक़ हुई है। ये इस आयत का शान नुज़ूल है, और अल्लाह तबारक तआला ने जो है उस वो इसी दुनिया के अंदर वह लोगों ने देख लिया कि उसके घर के लोग जो थे उन्होंने भी उसको घर से बाहर बीमारी के अंदर निकाल दिया, कोई उसके पास इसी हालत में जिल्लत के साथ मौत आई। बाद में वो लड़का जिसने गुस्ताखी की थी वो तो जैसा कि बतलाया, लेकिन बाकी फतेह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से कहा कि तुम अपने भतीजों को नहीं लाते मेरे पास। ये उतबा जो था अबूला, एक दूसरा बेटा था मुअत्तब, तो उतबा और मुअत्तब वे दोनों थे, उतैबा तो मारा गया था। तो हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से फरमाया उनको ले आओ। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको तलाश करने के लिए निकले, ये भाग करके अरफात चले गए थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला उनको लाए और वो भी हज़रत उनके साथ आए और ईमान कबूल किया। हुजूर ने कहा कि मैंने अल्लाह ताला से इन दोनों को मांग लिया है। देखो यानी हुजूर की शफकत, देखो जिस आदमी ने आपके साथ ऐसा मामला किया था उनकी औलाद को, यानी अल्लाह की तरफ से तो कहा ये किया, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करके मैंने भी इनको अल्लाह से मांग लिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर भी बाकायदा लोगों को बुला बुला करके हज़रत अबू बकर से कहा तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं, बुला ले आओ। उस ये अबू कहाफा उस्मान नाम था उनका, और भी लोगों को, तो यहाँ भी ऐसे लोग जिन्होंने तकलीफ़ें पहुँचाई थी बाकायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला बुला करके उनको पास बुलाते थे, उनके सामने इस्लाम पेश करते थे। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त का मामला है। बहरहाल ये सूरत जो है इसको लहब इसीलिए कहा जाता है, ये लफ्ज़ लहब आया है, अबू लहब उसकी उसका लकब और कुनियत थी। यहाँ कहते हैं कि भाई नाम क्यों नहीं लिया गया, तो उसका नाम था अब्दुल उज्जा, तो वो जाहिर है उसके नस्बत होती थी वो बुत की तरफ, इसलिए इस नाम को यहाँ लाना मुनासिब नहीं था कुरान के अंदर, इसलिए अबू लहब। फिर अबू लहब के अंदर वो इबाद भी थी, इसमें इशारा था कि वो भड़कने वाली आग के अंदर दाखिल होगा, इसलिए इसको यहाँ इसीलिए याद किया गया है। अल्लाह तबारक तआला हम यहाँ जो है बड़ी ये हैं इबरतें हैं, यहाँ ख़ास तौर पर मागना माल हु अमा का सब, बहुत से लोग अपने माल के गुरूर और घमंड के अंदर हक को कबूल करने से इनकार करते हैं और अल्लाह के मकबूल बंदों को सताते हैं, जैसा कि ابو لہب نے بھی حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، جانتا تھا کہ دین حق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے مقرب تھے ان کو ستایا. تو گویا اس میں عبرت کا یہ بھی ہے کہ بھائی مال کی وجہ سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ مال کسی کام آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا
فرمائے. یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ آج کی اس مجلس میں جن تین بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے تینوں کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. اور جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ اس نکاح میں بھی بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا دریا بنا. اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اللہ اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اللہ ان دونوں کی روزی میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے کہ اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔